पिछले बार हमने चर्चा की थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले स्वर्ग और नरक के बारे में। स्वर्ग क्या है? कोई जगह का नाम नहीं है जो कि अबव द क्लाउड है। नरक ऐसा कोई जगह नहीं जो अंडर द अर्थ है। ये हमारे अपने सुख और सुख पाने का जो साधन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो स्वर्ग है। अगर आप आज बहुत खुश हैं, फिजिकली आप हेल्दी हैं, मेंटली आप बैलेंस्ड हैं, आपके घर में सब कुछ ठीक है, जितना है आपके पास आप खुश हैं, तो आपका जीवन स्वर्गमय है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं किसी भी कारण से, फिजिकली, मेंटली, फैमिली कारण से, सोसाइटी के कारण से, नौकरी के कारण से, या आप मेंटली किसी चीज में संतुष्ट नहीं है, तो आपको दुख होता है। तो जीवन में सुख होना और सुख के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने मीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब स्वर्ग हैं। और दुख भोगना और दुख के जितने भी जगह हैं, टाइम है, टूल्स हैं, वो सब नर्क हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है। इस जीवन में भी हम स्वर्ग और नर्क भोगते हैं, मरने के बाद भी स्वर्ग नर्क भोगते हैं, पर किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं है। वो भोग से जैसा, जिस तरह का भोग हमें मिलेगा, वो डिसाइड होता है कि मैं स्वर्ग में हूं या नर्क में। ये हमने पिछले बार लंबी चौड़ी चर्चा सुनी थी। आज का दो तीन छोटे छोटे विषय हैं। स्वामी जी कहते हैं, श्रेष्ठ इंसान कौन है? हु इज द मैन ऑफ एक्सीलेंस। हो सकता है आपका सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, कि जो सक्सेसफुल हो लाइफ में, जो बहुत टैलेंटेड हो, जो बहुत ज्ञानी हो, वगैरह वगैरह। पर जो हमारे शास्त्र स्वामी जी जब बोलते हैं, स्वामी दयानंद जी, तो वो अपना विचार कम रखते हैं, जो शास्त्रों से पढ़ा उसका निचोड़ ज्यादा रखते हैं। तो वो लिखते हैं, आई रिगार्ड दैट मैन एज एक्सीलेंट हु ट्रीट्स ऑल पर्सन्स लाइक हिज ओन सेल्फ एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो, लॉस और प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड पोजिशन। कॉन्ट्रेरी टू दिस इज ए बैड पर्सन। जो सबको अपना जैसा समझता है, अपना जैसा समझने का मतलब है, मेरे साथ अगर वो घटना घटती तो मैं कैसे रिएक्ट करता? अगर सामने वाला वैसा ही रिएक्ट कर रहा है और आप उसको वैसे ही ले रहे हो, मानो मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, तो फिर आपकी जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो दूसरा होगा। जब आपको दर्द होता है और दूसरों को दर्द होता है, हम उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो ज्यादा होता है, पर जब तुम बीमार पड़ते हो वो हल्की फुल्की होती है। घर में भी मियां बीवी की यही प्रॉब्लम है, दूसरों के साथ भी यही है। अगर मुझे बुखार है, इट जस्ट लाइक कंपेयर टू कैंसर और समथिंग, ट्रीट मी दैट वे। तुम्हें है छोटी सी तो बुखार है, इतना क्यों शोर मचा रहे हो? तो क्योंकि हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उसका परिणाम है कि हमसे बहुत सारे अनजाने में गलत काम, अपराध होते रहते हैं, जो कभी तो हम कग्नाइज करते हैं, कभी हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। पर अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के दुख को भी, सुख को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी अपने तरह सोचें या जाने या माने या एक्सेप्ट करें या रिएक्ट करें। महाभारत में महर्षि व्यास लिखते हैं, बिल्कुल स्वामी जी इसकी शैडो में लेकर अपनी बात रखी, धर्म की डेफिनेशन में लिखते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहते सुनो, धर्म का जो निचोड़ है, जो सार है, जो जिष्ट है, असेंस से वो सुनो। और केवल मत सुनो, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, इसको दिल में रखो। क्या तुम्हें अगर समझनी नहीं आती, समझना नहीं आता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करें क्या न करें, तो एक सिंगल लाइन में ध्यान रखो, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, परेशान न समाचरित, दूसरों पर वो मत अप्लाई करो। इसका अपोजिट जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए भी वही व्यवहार करो। अगर मुझे कोई ह्यूमिलिएट करे तो मुझे बुरा लगता है, तो इसका मतलब दुनिया के हर मनुष्य को बुरा लगता है। तो दूसरों को जब ह्यूमिलिएट करते हो तो सोचो कि अगर तुम्हें दर्द हो सकता है तो दूसरों को भी होगा। तुम्हें कोई ग्रीट करने पर अगर खुशी होती है तो दूसरों को भी खुशी जरूर होगा, करके देखो। तुम किसी को ग्रीट करते हो, अभिवादन करते हो, सामने वाला आपको इग्नोर करता है तो आपको क्या फील होता है? इसका मतलब तुम्हें अगर बुरा फील होता है तो तुम भी दूसरों के साथ ऐसा मत करो। ये छोटी छोटी बातें अगर जो नोइंगली अननोइंगली हमारे व्यवहार में दिखता है, अगर हम उसको करेक्ट कर सकें तो हमारा लाइफ ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है सबके लिए। इवन आपका शत्रु भी आपको एडमायर करता है कि आप कितने अच्छे हैं। पर ये अगर आपकी पार्ट ऑफ नेचर बन जाए तो आप फिर बाकी इंसानों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। इतना ऊपर उठ जाते हैं, ईशावास्य उपनिषद लिखता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान उपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी प्राणियों में खुद को देखने लगता है और खुद में सबको देखता है, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। आपको जब आत्मज्ञान हो जाए तो नेचुरली आप ऐसा ही रिएक्ट करोगे, विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रैक्टिसिंग। जो सही मायने में संत होता है, साधु होता है, अगर आपको कभी परखना है, अगर वो बाय नेचर, पब्लिक में नहीं, जो बाय नेचर होता है वो छुपा के भी वही करता है, बाथरूम में भी वही करता है, पब्लिक में भी वही करता है, वो सबको अपना जैसा ट्रीट करता है, एक जैसा नहीं, अपना जैसा ट्रीट करता है। अगर उसको बड़े चेयर पर बैठने का शौक है तो सबको बड़े चेयर पर बैठाने का मन रखता है। अगर ऐसा आपको दिखता है, समझ लेना कि इस व्यक्ति में कुछ रियलाइजेशन होगा। ये तो बाय नेचर होता है, पर सबके साथ तो ये संभव नहीं है, पर ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए परेशान होते हैं, वो परेशानी इसीलिए कि आप अपने लिए एक दूसरी पैरामीटर रखे हो, दूसरों के लिए पैरामीटर आपका अलग है। जब तुम खुद टीन एज में थे तो क्या करते थे, बच्चों से डील करते समय वो भी सोच लीजिए। जब तुम 4 साल के बच्चा था तो क्या करता था वो भी दिमाग में लाइए, आपको लगेगा आपके बच्चे आपसे ज्यादा बेटर हैं। जो टीचर्स स्टूडेंट्स को डील करते परेशान हैं, वो खुद अपने जगह वहां रखकर उनके जगह अपने को रखकर देखें वो कैसे होते थे तो समझ में आ जाएगा। असली बात है कि रियल लाइफ में भी अगर हम दूसरों के जगह अपने को रखें और अपने जगह दूसरों को रखकर देखें, जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन में कितना, खुद के लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं। और अगर ऐसा आप बाई नेचर करते हैं तो यू आर द मैन ऑफ एक्सीलेंस होते हैं। अगला एक प्रसंग है, आर्य कौन है और दस्यु कौन है। ये थोड़ा ज्यादातर लोगों को हो सकता है इसके बैकग्राउंड पता ना हो। मोस्टली जो हिस्टोरियंस हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, आप लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो आर्यन हैं, आर्या वो बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से, इंडिया में भी यूरोप में भी, जो अपने आप को इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, वो एक्चुअली इंडियन नहीं है, वो भी फॉरेनर है, सेंट्रल एशिया से आए हैं, वो आर्यन थे। उसका एक ग्रुप यूरोप में गया। ध्यान रखिए, ये थ्योरी यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट की डिस्कवरी है और इस थ्योरी के बेस पर जर्मनी में इतना बड़ा होलोकास्ट हुआ, ज्यूस लोगों को मारा गया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक जो व्हाइट सुप्रीमेसी का मूवमेंट चलता है, आज भी छुप के चलता है, सामने चलता है, उसके पीछे जो रीजन है वो आर्यन थ्योरी है। भारत में जितने भी एंटी नेशनल मूवमेंट चलते हैं उसके बेसिक भी ये आर्यन थ्योरी है। वो तमिलनाडु को भारत से अलग होना हो, एंटी हिंदी मूवमेंट चलना हो, उन सब का, जो दलित मूवमेंट चलता है, एंटी नेशन मूवमेंट, उन सब का बेसिक, ये थोड़ा पॉलिटिकल चीजें हैं, ये आर्यन थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि संस्कृत लिटरेचर में, वेद आदि शास्त्रों में जो आर्य शब्द है, वो आर्य एक्चुअली एक रेस का नाम है जो कि प्राइमरीली सेंट्रल एशिया के रहने वाले हैं, वहां से माइग्रेट करके इधर उधर गए, इंडिया में गए, यूरोप में गए। तो आप कहेंगे यूरोपियन और इंडियन भाई भाई हैं, बिल्कुल सवाल नहीं उठता जी, कोई ये नहीं मानने को तैयार है। वो कहते हैं ये इम्प्योर ब्लड वाले जो हुए वो सब इंडियन है, जो प्योर ब्लड रहा वो यूरोपियन गोरे हैं, आप उनके खानदान के हैं पर बिगड़े हुए हो, दैट द बेसिक थ्योरी। तभी वो ज्यूस को मार, ज्यूस के खिलाफ थे क्योंकि इनके खून में मिलावट आ चुका है। भारत के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी गाये वगाए अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए यही थ्योरी आपके सामने रख देंगे कि जब आर्यन बाहर से आए तो ये हुआ ये हुआ। उनका क्या कसूर है, स्कूल के टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है वही पढ़े वही बोलते हैं, पर आगे जाकर कभी आप दूसरी कोई किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। देवियों सज्जनों, स्वामी जी जो लिखते हैं, अगेन मैं कहूं, वो वही लिखते हैं जो शास्त्रों में है। हमारे शास्त्रों में या ओवरऑल एंशिएंट लिटरेचर में जो संस्कृत में लिखे हैं, उसमें आर्य उसको कहा जाता है जो आर्य का सिंपल मीनिंग है श्रेष्ठ। जैसे अभी पढ़ा आपने द मैन ऑफ एक्सीलेंस, जो श्रेष्ठ इंसान है उसको आर्य कहते हैं, या अपने से जो बड़ा है, जो रेस्पेक्टेबल है, एडमायरेबल है, उसको भी हम आर्य कहते थे। एडमायरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? वो एक जेंटलमैन या जेंटलवुमन होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, उसी को आर्य कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप संस्कृत लिटरेचर में जितने भी ड्रामाज हैं संस्कृत में, या जो भी काव्य हैं, एपिक्स हैं, अगर आप पढ़ें आपको मिलेगा पत्नी पति को आर्य कह के बुलाती है, पति पत्नी को आर्य कहकर बुलाता है, आर्या कहकर। आजकल आप हनी बुलाते हैं, जानू बुलाते हैं, और भी कुछ कुछ बोलते होंगे। तो प्राचीन काल में आर्य और आर्या कहते थे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे ना। ऐसा नहीं कि पति ही आर्य है और पत्नी दास है, दोनों एक दूसरे को आर्य और आर्या कहलाते थे। शिष्य अपने गुरुओं को आर्य कह के बुलाते थे, प्रजा राजाओं को आर्य कहते थे। मतलब आप समझ गए, जो भी जिसको भी आप रेस्पेक्ट देना चाहें उनको आर्य और आर्या बोलते थे। तो ये एक गुणवाचक शब्द है, दिस इज ए वर्ड। कुछ इंडिकेट्स ए क्वालिटी, कि आपके कुछ गुण है, सम्मानजनक गुण, जिसके कारण आपको आर्या व आर्य कहा जाता है। किसी भी स्क्रिप्चर में, जिस स्क्रिप्चर को बेस करके ये थ्योरी यूरोप में चला और जिसको इंडियन एजुकेटेड लोगों ने भी बड़े हाथों हाथ ले लिया, उसका जो बेसिक है संस्कृत लिटरेचर में, कहीं भी आर्य किसी कम्युनिटी के लिए या किसी रेस के लिए नहीं आया है। जो भी श्रेष्ठ हो वो आर्य है, जो भी सत्य है, सज्जन है, वो आर्य है। स्वामी जी ने जो आर्य समाज रखा उसका उद्देश्य भी यही था। इट्स नॉट ए सोसाइटी ऑफ आर्यन पीपुल, इट्स ए सोसाइटी ऑफ नोबल पीपुल, जो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते या अच्छा है वो एक संगठन बनाए, इस संगठन में जुड़े, यही उनका गोल था। वो अलग बात है कि हम कितने आर्य हैं नहीं है, वो तो हम अपने आप को ही एनालाइज करेंगे। ठीक उसका उल्टा है दस्यु, जो रफ है, जो क्रूर है, जो जेंटल नहीं है, वो दस्यु कहलाता था। दस्यु डाकू को भी कहते हैं, रोबर को, थीप को, जो गुंडे लोग हैं, जो अनसोशियल लोग हैं, उनको भी दस्यु कहा जाता है। दस्यु और दास शब्द, दास का मतलब होता है स्लेव। हमारे लिटरेचर में दस्यु का मतलब होता है जो जेंटलमैन के अपोजिट, एक साधु आदमी है। साधु का मतलब संत नहीं है, साधु मतलब जेंटलमैन। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ सन्यासी नहीं है, साधु मतलब ऑनेस्ट, जेंटल पर्सन। उसका अपोजिट दस्यु है, कोई चोर है, डाकू है, बदमाश है, शैतान है, इस तरह के लोगों को दस्यु कहा जाता है। तो क्योंकि यूरोप में स्लेव सिस्टम बहुत एक्सेप्टेबल था और बहुत मुश्किल था उससे छुटकारा पाने की। फ्री में आप इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं पैसे थोड़ी बहुत देकर, तो जस्टिफाई करने के लिए कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, शास्त्रों में भी है, पुराने शास्त्रों में। वैसे यूरोपियन लोगों का वेद वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, पर इस थ्योरी को साबित करने के लिए वो वेद का ही सहारा लेते हैं। देवियों सज्जनों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आर्यन थ्योरी का बेसिक वेदाज है और वेदों के साथ यूरोपियन लोगों का कोई लेन देन नहीं है प्रैक्टिकल। सो दे आर जस्ट यूजिंग समथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट टू प्रूव देयर ओन मिस्चीवियस थ्योरी। तो दस्यु को उन्होंने कहा कि दीज आर स्लेव्स एंड वी आर आर्यंस। स्वामी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे लोग हैं वो आर्य हैं, ऐसा नहीं कोई पुरुष ही आर्य है, जो महिला है वो आर्य है, और जो बुरे लोग हैं वो दस्यु हैं। एक अगला शब्द स्वामी जी चुनते हैं, पुरोहित। इन सारे शब्दों को स्वामी जी क्यों कोशिश करते हैं डिफाइन करने की, क्योंकि ये सब चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। पुरोहित, पुरोहित का अर्थ होता है अब जिसको प्रीस्ट कहते हैं, जो आपके घर में आजकल आप उसको पंडित जी, शास्त्री जी, आचार्य जी जो भी बोलते हैं, शब्द था पुरोहित। पुरह कहते हैं सामने, इन फ्रंट। हित कहते हैं वेलफेयर, कल्याण, जिसके सामने हमेशा कल्याण का भाव रहता था। हु ऑलवेज थिंक्स गुड अबाउट अदर्स। प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे उनके बहुत सारे मंत्री होते थे, और हमारे राजनीति, प्राचीन राजनीति शास्त्र में, मतलब पॉलिटिकल साइंस बुक में, जो पुराने एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल साइंस बुक में मिलता है कि देर आर 18 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, 18 तरह के मंत्री हुआ करते थे राजाओं में, राजाओं के पास। उनमें से एक होता था पुरोहित। पुरोहित वही होना चाहिए जो आपके घर में पूजा करते, वेद आदि शास्त्रों को जानता हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, होना चाहिए। पर उसकी एक खास बात होती थी, वो 18 मंत्रियों में से अकेला पुरोहित ऐसा मंत्री होता था जिसको सैलरी नहीं मिलती थी, तनख्वाह नहीं मिलता था, जिसमें पेरोल में जिसका नाम नहीं होता था। क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो आपका भला चाहता है, आपको भला बोलता है, अगर वो आपकी सबोर्डिनेट है फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा आपको, आपके लिए जो भला है, हो सकता है आपको वो बुरा लगता हो आपके सामने वो बोलने के लिए, क्योंकि वो आपसे पैसा लेता है, उसकी लाइफ लिविंग और आप पर डिपेंड करता है, उसकी जीविका आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पता नहीं नाराज हो गए, आपने कहा जी आप गलत कर रहे हो, इससे आपको फायदा नहीं होगा, ये आपके वो आप ये अच्छी चीज नहीं है, गुस्सा करेगा, निकाल देगा, कुछ भी करेगा। पर हर व्यक्ति तो चाहता है ना उसका कोई वेल विशर हो, पर हमारी एक प्रॉब्लम है, हम सबको ही चाहते हैं कि हमारा कोई वेल विशर हो, पर वो वेल विशर वो हो तो मेरा वेल विशर, पर मुझे हमेशा तारीफ करे, जो कुछ करूं वो सब में कहे कि सब ठीक कर रहे, फिर वो कैसा वेल विशर? मुश्किल है। कोई आपका भला चाहने वाला हो और हमेशा आपकी तारीफ करे, ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आइडिया है, चेंज इट, हो सकता है आप बहुत सारे वेल विशर को निकाल रखे हो अपने लाइफ में और ऐसे लोगों को रखे हो अपने लाइफ में वेल विशर समझ के जो एक्चुअली आपको आपके साथ बने रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं। कोई चीज आप गलत कर रहे हो तो भी ये ठीक है, ये हमारी नेचर है। इसीलिए प्राचीन काल में जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको जिंदा रहने के लिए तो पैसा तो कमाना है। वहीं से शुरू हुआ दक्षिणा का कॉन्सेप्ट। आज भी आप ब्राह्मण आपके घर में आता है, पुरोहित आता है, आप उसे दक्षिणा देते। दक्षिणा का सिंपल मीनिंग है फी। आपके घर में एक मैकेनिक आता है, इंजीनियर आता है, घर बनाने वाला आता है, डॉक्टर आता है, आप उसको पसंद नहीं करते तो आप बदल देंगे, पर उसकी लाइफ तो खराब नहीं होगा ना। वो आपसे फी लेता है, काम करता है, आप नहीं देंगे, वो दूसरे के जगह जाएगा। इसी तरह पुरोहित का रोल होता था कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर डिपेंड ना करे, जिससे कि उसको जो सत्य बोलने का जो उसका ड्यूटी है, काम है, वो उसमें कंप्रोमाइज ना कर सके। देश में अकाल पड़ा है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, मंत्री लोग राजा को कह रहे हैं कि महाराज आप तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राजा हैं, आपके शासन में सब प्रजा खुश हैं, कोई दुख समस्या नहीं, सब ठीक चल रहा है, प्रजा भूखे मर रही है, टैक्स बढ़ रहा है, लोग राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं क्योंकि खाने को पैसा नहीं तो भी राजा टैक्स बढ़ाता जा रहा है, राजा अंदर खुश है क्योंकि उसका जो रिपोर्ट मिल रहा है सब अच्छा रिपोर्ट है। कौन बोलेगा कि महाराज आप गलत कर रहे हो? अगले दिन सरकलम। ये पुरोहित करता था, उसी में ये अधिकार था, उसमें ये हिम्मत था, उसकी ये ड्यूटी थी ये बताने के लिए कि ये गलत है, ये सही है, सच बताने। इसीलिए वहीं से दक्षिणा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। देवियों सज्जनों, प्राचीन काल में जितने गुरुकुल होते थे, विद्या का क्षेत्र जो हाउस ऑफ नॉलेज या प्लेस ऑफ नॉलेज लर्निंग, वो सब इंडिपेंडेंट होते थे, ऑटोनॉमस होते थे, कोई राजा का ग्रांट उनको नहीं मिलता था, वो किसी धनी आदमी से डोनेशन नहीं लेते थे, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर आपको राजा के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको डोनेशन देने वाले के हिसाब से चलानी पड़ेगी। गुरुकुल भिक्षा से चलता था, गुरु और शिष्य दोनों प्रतिदिन या जो भी हफ्ते में जो भी दिन है वो भिक्षा के लिए जाएंगे। जंगल में गुरुकुल होता था, शहर से या गांव से दूर, और भिक्षा करके किसी के भी घर जाएंगे। नियम है कि 3 दिन से अधिक एक घर में नहीं जाएंगे, हमेशा नए नए घर जाएंगे, जो मिला उसे गुरुकुल चलाते थे। उसके बैकग्राउंड में जो थॉट था वो यही था देवियों सज्जनों, किसी के डिपेंडेंट नहीं होना, नो वन शुड इन्फ्लुएंस योर एजुकेशनल स्ट्रक्चर। जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली कर सकें। और उसको हमारी सोसाइटी, राजा लोग रेस्पेक्ट करते थे, आज की तरह नहीं। इसका जो मॉडर्न फॉर्म है आपको वेस्टर्न कल्चर में दिखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस होना, इसके मूल में कारण वही है जो एंशिएंट इंडिया में रीजन था और जो मॉडर्न यूरोपियन कल्चर में जो है कि अगर सरकार उसे इन्वॉल्व रहे, धनी लोग उसमें इन्वॉल्व रहे डोनेशन देने वाले, तो फिर जो रिसर्च का, पढ़ाई का, सोचने के तरीके का वो फर्क पड़ेगा। कोई तो हो सोसाइटी में जो ठीक सोचे, जो ठीक बोले, जो ठीक करे विदाउट केयरिंग ऑफ पॉलिटिकली करेक्टनेस। मोस्ट ऑफ पीपुल शुरू में भी, आज में भी, हमेशा से अपने आप को भला दिखाना चाहते हैं। आपके दोस्त चोरी भी करे तो भी तुम अच्छे आदमी हो, कौन किसके साथ पंगा ले, बुरा करे। पर कुछ तो सोसाइटी में होना चाहिए ना, लोग जो सच जाने और सच बोले। कम लोग होते हैं पर वो जो होते हैं वो पुरोहित होते हैं, आपके भी इंडिविजुअल, सोसाइटी के भी वो पुरोहित होते हैं, जिनके सामने सबका कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है, जो ये नहीं केयर करते हैं कि इसके साथ मेरा क्या होगा। पर सोसाइटी तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए प्राचीन काल में स्ट्रक्चर बनाया गया दक्षिणा का, और मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हुआ। राजा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है सरकार, पर डिसीजन लेने में वो ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, वो इंडिपेंडेंटली सोच सकें, बोल सकें, कर सकें, लिख सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, जो करना चाहे कर सकें। इसी को पुरोहित कहते हैं देवियों सज्जनों। आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में जो मिसपरसेप्शन बहुत ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कॉमन आदमी में, क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा जिस पर डिपेंड करते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर रिलीजियस नॉलेज, वो बेसिकली इलिटरेट और सेमी इलिटरेट प्रीस्ट होते हैं, पुरोहित जिनको आजकल आप बोलते हैं, और वो 24 घंटे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं पैसे के चक्कर में। घर में आप साईं बाबा का मूर्ति रखो जी, पूज लेंगे, बस 51 डॉलर एक्स्ट्रा दे देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। अमुक बाबा को पूजेंगे जी, कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब हजार आप हिंदू पृष्ठ से कुछ भी करवा सकते हो, बस दक्षिणा दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पुरोहित हो ही नहीं सकते। उसका काम था, अगर यजमान गलत करता है तो बताए, इट्स नॉट राइट। पर पब्लिक भी ऐसा देख सुनकर इतनी आदि हो चुका है, कोई सही मायने में पुरोहित मिले तो तिलमिला जाते हैं गुस्से में, सुनने की अब आदि नहीं है। इसीलिए भारत में हिंदू सोसाइटी में पुरोहितों का जो स्तर है आम आदमी के नजर में बहुत गिरा हुआ होता है। सामने तो पैर छू देते हैं, पैर इसलिए नहीं छूते हैं कि उसको रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि छूने से स्वर्ग जाने का रास्ता खुलता है। अब गधा भी खड़ा हो, अगर लिखा है कि छूने से स्वर्ग जाओगे तो छू लेते हैं, ना छूने से नरक जाएंगे, ऐसा सुना है, पढ़ा है। मां बाप का, दादा दादी का प्रेशर आता है, अगर यहां पर है तो भारत से फोन आता है, दिल में रेस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने ईगो के कारण रेस्पेक्ट नहीं है, त्रिश्लोक अपने रेस्पेक्ट लायक रहे ही नहीं है, उनमें सच बोलने की हिम्मत रहा ही नहीं है, भला सोचने की हिम्मत रहा ही नहीं है, सिर्फ पैसे के चक्कर में। इसका कारण है कि लोगों का, लोग जितना रिलीजियस होते जाते हैं उतना हिपोक्रेसी बढ़ती जाती है। कोई ठोक पीट के बोलने वाला नहीं कि ये गलत है ये सही है, और हम आप सुनने की भी आदि नहीं रहे, कहीं सुनते तो आप तिलमिला जाते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं था, कैसे सुनोगे, हर किसी को तो अपनी पड़ी है, कहां से दो पैसा मिल जाए। तुम्हारे पृष्ठ को भी वही समस्या है, तुम्हारे बाबा साधुओं को भी यही समस्या है, उनको अपना फॉलोअर बढ़ाना है। बाबा जी क्या करूं, दुकान में बेईमानी बढ़ रही है तो क्या करूं, कुछ उपाय बताए। बाबा जी बता दे, बेईमानी काम करो, नहीं कहीं ग्राहक ना छूट जाए, कस्टमर ना चला जाए। कोई नहीं बेटे, एक बड़ा सा यज्ञ रखो, 8 ब्राह्मण बुलाओ, इतनी दक्षिणा दो, इतनी गायें दान पर दो, सब ठीक। तो क्या है, कस्टमर भी ठीक, दुकानदार भी खुश, कस्टमर भी खुश। और इस बीच में कोई कूद पड़े हमारे जैसा आदमी, सबसे धूर्त आदमी है। देवियों सज्जनों, पुरोहित वो है इज द वेल विशर ऑफ द यजमान एंड द प्रीचर ऑफ ट्रूथ। क्योंकि अब हमारी आदत पड़ चुकी है ये सब सुनने ना सुनने की, इसीलिए आपके मोस्ट ऑफ प्रिस्ट भी करप्ट हैं, क्योंकि वो लाइक करप्ट। आपको, आप ऐसा नहीं कि आपको करप्शन पसंद है, आपको अपनी तारीफ पसंद है। क्योंकि मुझे अपनी तारीफ पसंद है तो जो तारीफ करे, सचा करे झूठा करे, मैं जैसा भी करूं, मेरे साथ एग्री है तो सही है। देवियों सज्जनों, अगला शब्द है जन्म, ये थोड़ा अलग से है। विच कंसिस्ट इन द सोल्स एजम्पशन ऑफ द ग्रॉस विजिबल बॉडी व्यूड इन रिलेशन टू टाइम इन थ्रीफोल्ड। आत्मा, बहुत बार हमने चर्चा की, हो सकता है आगे भी करेंगे, आज शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। जन्म या बर्थ किसको कहते हैं? आत्मा जो आपकी और मेरी लाइफ है, जिसको मैं कहता हूं कि लाइफ। बस जब आप कहते हैं कि मैं या तुम, इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आई और यू और ही और शी? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स। एक है आत्मा जो कि कॉन्शियंस है, दूसरा है बॉडी शरीर जो मैटेरियल है। ये दोनों में से मैं और आप एक नहीं है। मैं केवल आत्मा हूंगा तो कुछ नहीं कर सकता, ना देख सकता, सुन सकता, खा सकता, बोल सकता, ना मैं कोई घर होगा, ना मेरा कोई बाजार होगा, कुछ नहीं। मैं केवल शरीर हूं तो सूखी लकड़ी की तरह मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी होता है। तो मैं एक कॉम्बिनेशन हूं आत्मा और शरीर का। जहां कॉम्बिनेशन है वहां सेपरेशन भी तो होगा, जहां जॉइंट होता है वहां अलग होगा। आत्मा जब एक ग्रॉस बॉडी को, एक स्थूल शरीर को धारण करता है, वो जन्म का शुरुआत है। जिस दिन गर्भाधान होता है, कंसेप्शन होता है, किसी भी रूप में, वो बीज के अंदर का हो या मनुष्य पशु पक्षियों का हो, पहले दिन जहां से कंसेप्शन होता है वहीं आत्मा का प्रवेश के साथ ही शरीर बढ़ने, ग्रो करने लगता है, उसको जन्म कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट मृत्यु, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे आपने गीता में पढ़ा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आपके कपड़े, आप नए कपड़े खरीद के लाते हो, पहना, एक बार पहना, धोया तो उसके कलर फेड हो गए, छोटा हो गया तो आप फेंक देते हो। कभी दो चार महीने पहना, अब पहनने लायक नहीं रहा, किसी कारण से टूट गया, फट गया, तो आप छोड़ देते हो। कुछ कपड़े आप 10 साल से पहन रहे हो तब भी चमक रहा है, अच्छा लग रहा है, आप थक चुके हो, ऊब चुके हो, पर तब भी मन नहीं करता है उसको रखने के लिए क्योंकि अच्छा है। इसी तरह आत्मा और शरीर का संबंध है। शरीर जब रहने लायक नहीं होता है तो आत्मा छोड़ देती है एक नए शरीर के लिए। वो जो शरीर को छोड़ना ये मृत्यु है और नए शरीर को पाना ये जन्म है। तो स्वामी जी लिखते हैं जन्म तीन तरह का है टाइम के हिसाब से, क्या एक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जन्म हुआ और पहली बार ही इंसान बना, नहीं, आपके हजारों जन्म बीत चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानी जन्मानी तवचार जुना, कृष्ण गीता में लिखते हैं मेरे कितने जन्म बीत चुके हैं, तुम्हारा भी कितना जन्म बीत चुका है अर्जुन, कृष्ण कहते हैं। ये कोई अकेला जन्म नहीं है, तो वो पास्ट के जन्म है, हजार लाखों करोड़ों मिलियन सब जन्म ऑलरेडी हम पा चुके हैं। कभी इंसान के रूप में पैदा हुए, कभी पेड़ के रूप में, कभी पशु पक्षी, कभी इंसेक्ट, कभी किस किस के रूप में पैदा हुए हैं। और अभी जो जन्म मिला है ये कोई लास्ट भी नहीं है, आगे हजारों लाखों करोड़ों जन्म भी मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट आपके पास है, उसको सही यूज करो, इस जीवन में भी खुशी है, अगले के लिए भी आप तैयारी करते हो कि आपको एक अच्छा जन्म मिले, अच्छा भोग मिले, अच्छा सुख मिले। तो इसी के साथ आज इस बात को विराम देते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। अभी दो हफ्ते तक मैं नहीं रहूंगा, मेरे जगह डॉक्टर हरिश्चंद्र जी देखेंगे, आपको प्रवचन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।